निद्रा सोने में मैथुन सब भोग करने में चारों के अंदर अपनी पूरी योग्यता लगा है, लेकिन मनुष्य योनी एक ऐसी योनी है जिसमें भगवान ने विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो मनुष्य योनी ऐसी योनी है जिसमें जीव जो भगवान ने गुण दिए हैं उन गुणों का सोच समझ कर प्रयोग कर सकता है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण हो तो उस गुण के कारण उसमें अभिमान आ जाता है, वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और सब लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए। इस तरह का जो विचार है इस विचार को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं कि भगवान से मुख होकर अपने बारे में सोचना, अपने हित के बारे में सोचना और ये सोचना अहम मेरे, मैं ही हूँ सब कुछ और सारी वस्तुएं मेरी, तो ये आसुरी विचार है, आसुरी प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति के चलते व्यक्ति दूसरे जीवों पर हिंसा करता है, अत्याचार करता है, ना खुद भगवान की भक्ति करता है और ना दूसरों को करने देता है। सो इस तरह की प्रवृत्ति का जो वर्णन है भगवान कृष्ण भगवद गीता में कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो असुर होते हैं वो क्या सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं मेरा जो स्वामित्व है वो हर जगह फैला हुआ है और जहाँ आज नहीं फैला हुआ मैं कोशिश कर रहा हूँ कल वहाँ पर भी फैल जाए। ईश्वर हम अहम भोगी और हर वस्तु का उपभोग करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है और लोगों को भोग नहीं करना चाहिए। इसके कई उदाहरण मिलते हैं आपको, रावण है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, इस प्रकार अनेक असुर हुए समय समय पर, नरकासुर, वानरासुर, जिन्होंने भगवान की सत्ता को नकार कर हर वस्तु का उपभोग करने की, स्वयं उनका भोग करने की कोशिश की। सो ऐसी प्रवृत्ति जो है कि ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हम, सारी सिद्धियां मिल गई, मैं जो लघिमा अनिमा प्राप्ति सृष्टि, इस तरह से आठ सिद्धियां हैं। लघिमा है बहुत छोटा हो जाता है, छोटे से पाइप में से भी निकल जाएगा, लघिमा बहुत बड़ा हो जाएगा, और प्राप्ति है यहाँ बैठकर नाच बढ़ाएगा तो वो अमेरिका में से भी कुछ सामान उठा कर ले आएगा, ऐसी योग शक्ति पानी पे चलने की शक्ति में। तो एक व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो सबको दिखा रहा था पानी पर चल के, तो एक संत को संत ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला मेरे पास पानी में चलने की सिद्धि है। तो बोला कितना टाइम लगा सिद्धि प्राप्त करने में, तो मुझे 30 साल लग गए, मैंने बहुत परिश्रम किया अब मुझे पानी पर चलने की सिद्धि मिल गई है। तो संत ने कहा ये तो 10 पैसे की सिद्धि है, मैं नाव में बैठ के वैसे ही पानी कर देता हूँ, तो ऐसी सिद्धि का क्या है। तो सिद्धो हम बलवान सुखी और मैं ही बलवान और सब में श्रेष्ठ सबसे ज्यादा सुखी रहने का अधिकार मेरे पास है। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं इसमें अहम मैं की भावना प्रबल है, बलवान है और व्यक्ति देहात बुद्धि के कारण, देहात बुद्धि का मतलब मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से सारे संबंधित वस्तु है, इसको देहात बुद्धि कहते हैं। और देहात बुद्धि अज्ञान से पैदा होती है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, तो ये जो विचार है, ये विचार अज्ञान कहलाता है। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, तो भौतिक जगत में गिर जाता है। कृष्ण बहिर्मुख है, भोगवांछा करे, निकटस्था कार्य, निकटस्था माया कार्य छपटिया है। कि जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति, मेरा कृष्ण से स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं भोगने की इच्छा करूँगा, और अगर कृष्ण ने उसमें कुछ रुकावट डाली तो मैं कृष्ण को मार दूंगा। तो ऐसा ही उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में हम देखते हैं अनेक असुरों ने भगवान को मारने की कोशिश की। तो उसमें उन अनेक असुरों में एक असुर था तृणामृता। तृणामृता जो था वो एक धुएं के, धूल के बवंडर की तरह आता था। अब जैसे कि पीछे भी आंधी आई थी ना, तो कई पेड़ टूट गए थे। सो एक बवंडर की तरह आता था, चक्रवात की तरह, सारे चारों तरफ धूल ही धूल कर देता था, और जितने पेड़ पौधे हैं सारे उखड़ जाते थे। दिन के समय रात हो जाती थी, लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसको बहुत अच्छा लगता था तृणामृत करना। और तृणामृत जो है वो अपने मित्र कंस के कहने पर भगवान कृष्ण का व्रत करने के लिए वृंदावन गया। तो भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे, 1 वर्ष के थे। सो यशोदा माता उनको अपनी गोदी में थपथपा रही थी, तो अचानक भगवान ने अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यशोदा माई उनको अपनी गोदी में बिठा नहीं पाई, इतना ज़्यादा भार हो गया भगवान कृष्ण। और उन्होंने उतारा कि भगवान कृष्ण को जमीन पर रखें और अपने दूसरे कामों में रखें, और इतनी देर में ही तृणामृत करना वहाँ पर। तो जितने भी वृंदावन के लोग थे सबकी आंखों में धूल डल गई, दिखाई देना बंद हो गया। तो कहावत है ना, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देना। इतना अंधेरा हो गया कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, और तृणामृत बहुत ही भयंकर आवाज कर रहा था, सारे लोग बहुत ही डर गए। और भगवान कृष्ण जिन्होंने अपना भार बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, अचानक एकदम कमल की पंखड़ी से भी ज़्यादा हल्के हो गए और तृणामृत उनको उड़ा कर ले गया। तो तृणामृत सोच रहा था कि इनको, इस बालक को बहुत ऊँचे ले जाकर मैं नीचे पटक लूँगा और इस बालक की मृत्यु। तो इस विचार से तृणामृत ने भगवान कृष्ण को उठाया और बहुत ऊंचे ले गया। लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, तो तृणामृत ने और भी ज़्यादा शक्ति जगाई। और बहुत बलवान था, बहुत सिद्धियाँ थी उसमें। योग शक्ति के द्वारा उसने अनेक सिद्धियाँ प्राप्त, लेकिन वो नहीं जानता था कि कृष्ण योगेश्वर है, सारी योग शक्तियाँ भगवान के मुट्ठी में, भगवान का पूर्ण नियंत्रण है हर प्रकार की योग सिद्धि पर। और पराशर मुनि भी कहते हैं ऐश्वरस्य समग्रस्य यशस्य श्रिया, वीरस्य यशस्य श्रिया, वैराग्यश्च षट भक्तिधर्म। कि 6 प्रकार के भक्त, भगवान का अर्थ है कि भगवान, भक्त का अर्थ है भाग्य ऐश्वर्य, और बाण का अर्थ है स्वामी, तो भगवान का अर्थ है जिनके पास छह प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। सो अगर हम भगवान कृष्ण को देखें तो भगवान कृष्ण में सभी प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विराजमान है। भगवान सबसे अधिक सुंदर है, भगवान सबसे अधिक बलवान है। भगवान कैसे कि भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर सबसे छोटी उंगली को जो सबसे कमजोर मानी जाती है उसके ऊपर भगवान ने सात दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया और उनको कुछ थकान भी महसूस और भगवान सबसे सुंदर है। लक्ष्मी भी भगवान की सुंदरता से आकर्षित होकर भगवान विष्णु को छोड़कर भगवान कृष्ण की सब प्राप्त करने की तपस्याएं करती है। भगवान कृष्ण के पास सारा ज्ञान है और भगवान ने वो ज्ञान का कुछ अंश भगवद गीता के रूप में हमें प्रदान किया। कोई व्यक्ति युद्ध स्थल पर जहाँ की चारों ओर कोलाहल हो रहा हो इतना अद्भुत ज्ञान कैसे प्रदान कर सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण बिना किसी विशेष प्रयास के इतना अद्भुत आत्मा और परमात्मा ज्ञान प्रदान किया। तो इसे पता चलता है कि भगवान सबसे अधिक ज्ञानवान है और भगवान में वैराग्य भी पूर्ण रूप से विराजमान है। भगवान की 16,000 से अधिक रानियां थी लेकिन भगवान किसी भी रानी से आसक्त नहीं थे। और जब भगवान के कर्तव्य निर्वाह का समय आया तो भगवान ने वृंदावन भी एक क्षण में छोड़ दिया और मथुरा चले गए। ये सब भगवान के वैराग्य का प्रदर्शन है। इस प्रकार भगवान में अनेक गुण है जो भगवान में पूर्ण रूप से विराजमान है। सो तृणावर सोच रहा था कि मेरे में इतनी सिद्धियां हैं, इतना बल है, मैं चुटकी में ही भगवान कृष्ण को हरा दूंगा, लेकिन भगवान सभी लोक शक्तियों के स्वामी हैं और भगवान ने हंसाने से तृणावर को परास्त कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपना भार इतना अधिक बढ़ा दिया कि तृणावर्त के लिए उनको उठाए रखना बहुत मुश्किल है। सो जब तृणावर्त उनको उठाए नहीं रख सका तो उसने सोचा यहीं से गिरा देता हूँ, अभी भी बहुत ऊंचा नहीं है, यहाँ से गिर के भी छोटा सा बालक है मर ही जाएगा। तो उसने जैसे गिराने की कोशिश की तो गिरा नहीं पाया क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने टांगों से उसकी गर्दन जकड़ दी थी और इतना वजन भगवान का बढ़ गया था कि वो ऑन द मूव जमीन पे गिर गया था और चट्टान पर गिरने की वजह से तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और भगवान को क्या हुआ, भगवान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, भगवान उसके शरीर के ऊपर आराम से खेल रहे थे। और जैसे गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण अचानक उनको दूर हट गए तो भगवान कृष्ण दिखाई दिए उनको, उन्होंने फटाफट भगवान कृष्ण को उठाया और ले जाकर यशोदा माई को दे दिया। सो तृणावर्त ने बहुत प्रयास किया भगवान का वध करने का, भगवान को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन भगवान का थोड़ा हवा में झूले खाने का मन कर रहा था, झूले जरूर खाते हैं भगवान ने और बिना किसी नुकसान के वापस आ गए। ऐसी ही लीला भगवान कृष्ण के पहले अवतार चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की। जब छोटे से बालक थे तो उनके माता पिता उनको अनेक प्रकार के आभूषणों से सजा कर रखते थे। एक बार घर के बाहर खेल रहे थे तो दो चोरों की नजर उन पर पड़ी और उनके आभूषण देख के चैतन्य महाप्रभु आभूषण देख के उनका मन अच्छा गया। तो उन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु जो उस समय निमाई के नाम से प्रसिद्ध थे छोटे से बालक थे, उनको लालच दिया संदेश का, क्या तुम्हें संदेश खिलाते हैं? तो संदेश पकड़ाया और अपने कंधे पे उठा के भाग गए वहां से। और उनका विचार था कि निमाई को ले जाएंगे अपने घर और वहां पर सारे आभूषण उतार, लेकिन भगवान की माया के प्रभाव से पूरे नवदीप का चक्कर लगाकर वो वापस चैतन्य महाप्रभु के घर ही पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने देखा, वो अपने मन में सोच रहे थे कि हम अपने घर पे आए, तो उन्होंने जैसे ही वो बालक को नीचे उतारा तो उनको एकदम होश आया कि ये तो यहीं से बालक को उठा के ले गए। और चारों तरफ शोर मच गया था कि निमाई दिख नहीं रहा, सब लोग ढूंढ रहे थे। तो पिटाई के डर से और दोनों चोर वहां से भाग। चैतन्य महाप्रभु, उनकी घूमने की इच्छा थी तो वो चोरों के कंधे पर सवार होकर पूरे नवदीप की सैर की उन्होंने और वापस आए। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बलशाली, कितना ही चालाक क्यों ना हो, भगवान कृष्ण का कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान कृष्ण या भगवान का इनको नुकसान पहुंचाने की क्षमता किसी में भी, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और हम सब जो बंद जीव जो है, चाहे कितने ही बलशाली क्यों ना हो, हम सब भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधे रहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो भौतिक है वो आध्यात्मिक वस्तु को कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका एक और प्रमाण हमें मिलता है रामायण में, जब विभीषण भगवान राम की शरण लेने के लिए आया, सो सब बांधवों का विचार था कि विभीषण का वध कर दिया जाए क्योंकि राक्षस है, आज ये शरण लेने के लिए आया है, लेकिन कल जब लोग असावधान होंगे तो वध भी कर सकता है, कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो भगवान राम ने उस समय कहा कि अगर कोई एक बार भी ये कह दे कि मैंने आपकी शरण स्वीकार की, तो भगवान तुरंत उसे स्वीकार करते हैं। और भगवान ने कहा कि विभीषण छोड़ो, रावण छोड़ो, अगर पूरा ब्रह्मांड भी अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मेरा बाल भी मांग नहीं कर सकता। और भगवान ने कहा रामायण कि मैं अपनी उंगली से पूरे भगवान को मसल सकता हूँ। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी यशोदा माई को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तो भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं तो भौतिक प्रकृति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, हमेशा भौतिक प्रकृति से दिव्य बने रहते हैं। और भौतिक प्रकृति की कोई भी वस्तु भगवान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सो इन असुरों की तरह रावण, हिरण्याक्ष इत्यादि त्रिनावर्ता, इन असुरों की तरह अगर कोई अपने बल का प्रयोग, अगर अपने बल का प्रयोग भगवान को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसी में कुछ गुण हो, अगर वो उस गुण का प्रयोग भगवान की सेवा में करे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर सके। मृत्यु के समय भगवान को स्मरण रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भगवान भगवद्गीता में कह रहे हैं कि आप मृत्यु के समय जिस भी तरह का विचार आपके मन में आएगा उसी प्रकार से आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। यम वापि स्मरण भावम तज्जयन्ति अन्ते कलेवरम, तज्जयन्ति अन्ते कलेवरम का अर्थ है मृत्यु के समय कलेवर का अर्थ होता है शरीर, ये शरीर त्याग कर सकते हैं। जिस भी तरह का विचार आपके मन में आता है उस विचार के हिसाब से तम तम है व्यक्ति कौन पहला सदा तक भाव भावेगा। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, मृत्यु के समय जैसा भी विचार होगा वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। सो मृत्यु के समय अगर हम धन के बारे में सोच रहे हैं तो अगला जीवन हमें हो सकता है साफ का मिले। मृत्यु के समय अगर हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो उस घर में हम कीड़े के रूप में जन्म ले सकते हैं। जहाँ पर हमारे परिवार के लोग हम पर बेगौन से छिड़क कर हमें मार बताएंगे। और ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि व्यक्ति को याद था कि वो परिवार उसका है पूर्व जन्म का, लेकिन वो खुद अब मनुष्य में नहीं रहा और परिवार वालों से मिलने गया पशु के रूप में, तो उनको लाठियों से मार के भगा दिया। सो अगर घर में आ सकती हो तो घर में किसी कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेंगे और अपने प्रिय बांधवों के हाथ से ही मृत्यु को प्राप्त। सो इस प्रकार अगर जो पुरुष है अगर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा आसक्त हो और मरते समय अपनी पत्नी का ध्यान करें और अगले जन्म में उनको स्त्री का शरीर प्राप्त होगा, और स्त्री अगर अपने पति का ध्यान करेगी तो उसको पुरुष का रूप मिलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर मान के उसकी सेवा करे ताकि अगले जन्म में उसको कम से कम पुरुष का शरीर मिले। लेकिन पुरुष को स्त्री से आसक्ति के बारे में निषेध है, उसको मना किया गया कि पुरुष जब शरीर मिला है तो स्त्री में से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों की पुरुष से आसक्ति ठीक है। आसक्ति किसी भी स्तर पे हो वो आसक्ति गलत ही है। अपने किसी भी चाहे स्त्री हो या पुरुष उसको प्रयास करना चाहिए कि सब प्रकार की आसक्ति त्याग कर भगवान के नाम में भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न रहे। क्योंकि चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का, दुख हर एक शरीर में बराबर मिलता है। सो चाहे पुरुष का शरीर मिले या स्त्री का, सब में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। सो मनुष्य जन्म मिलने पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दोबारा से ये दुखदायी स्थिति प्राप्त नहीं हो, इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाया जाए। वो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं जो भी गुण हमें मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। और भगवान अपने दयालु हैं कि उन्होंने सभी मनुष्यों को दो चीजें अवश्य प्रदान की, एक जीवा और एक कान। तो अपने जीवा से जबान से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करके हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे।
तो इसको कीर्तन कहते हैं। और जब हम इन दिव्य नामों का उच्चारण करें तो ये नाम हमारे कानों में प्रवेश करेंगे, हम इन नामों को सुनेंगे और इस सुनने को क्या कहते हैं श्रवण। सो जो श्रवण और कीर्तन है ये ऐसी सुविधा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको आसानी से कर सकता है, इसमें कुछ भी विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको समय देना है। सो आप सबसे प्रार्थना है कि जो भगवान ने विशेष गुण आपको और सभी मनुष्यों को प्रदान किया, उसका लाभ व्यर्थ की बातों में नहीं करके भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने में रहता है और अपने कानों को उन नामों को सुनने में सेवा में रहता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इस शरीर को सुनने के बाद आप भगवान के धाम में जाओगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो पापा जनार्दन रूप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नरसिंह आरती गाए और बाद में आप सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और 16 तारीख को एकादशी है और बड़ी भारी एकादशी है। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि आप सब एकादशी का पालन कीजिए। जो लोग निर्जल एकादशी नहीं रख सकते, पानी अगर पीना मजबूरी हो तो पानी पी लीजिए, कुछ अगर खाना पड़े तो फल इत्यादि ले लीजिए, लेकिन अन्न बिल्कुल भी मत खाइए। अन्न जो है एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत ही बुरा माना जाता है। इस संसार के जितने भी दोष हैं एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम एकादशी को अन्न खाएंगे तो सारे दोष हमें लग जाएंगे, इसीलिए एकादशी को आप अन्न नहीं खाए। अगर आप निर्जल रख पाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी रख पाते तो निराश होने की बात नहीं है। आप पानी पीकर कुछ फल इत्यादि लेकर आप और भगवान का नाम लेते हुए 16 तारीख को बिता सकते हैं और 17 को अच्छे से खूब 2 दिन का प्रसाद पा सकते हैं। चंदन रूप का प्रश्न याददाश्त आपने बढ़ानी क्यों है? तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि याद रखने की शक्ति और भूलने की शक्ति उससे ही आती है। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आप भगवान कृष्ण की शरण लीजिए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, आप भगवान कृष्ण का नाम जपेंगे और भगवान को लगेगा कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ा देनी चाहिए, तो भगवान ऐसे कृपा करेंगे कि आपको कई सालों की बातें भी याद आ जाएंगी। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप सुबह सवेरे उठ के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर भगवान का दिव्य नामों का जप करें। तो चंद्र लोगों का प्रश्न है कि एकादशी, सबको पता ही है पूरे साल में